दिन भर सोमवार 9 नवंबर मैं हूं निखिल रंजन। बीजेपी में हार के कारणों की समीक्षा शुरू। संसदीय बोर्ड ने विपक्ष की एकजुटता को बताया कारण।
तो हर एक घटक अपना पूरा वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करवा पाता। ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे, वो अनुमान और आकलन हमारा गलत था।
हार की समीक्षा से पहले ही आपस में आरोपों का सिलसिला शुरू। किसी ने गोमांस और आरक्षण पर बयान तो किसी ने हाईटेक चुनाव प्रचार को बताया जिम्मेदार।
1962 में जवाहरलाल ने भी पार्लियामेंट में कहा था, लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव हो रहा हो उस समय इसको उठाने की क्या जरूरत थी।
बीसीसीआई से एन श्रीनिवासन की छुट्टी, कहा सीमेंट का धंधा संभालेंगे। आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए महागठबंधन के घटक दलों के आपस में सफल वोट ट्रांसफर की वजह से हारा है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी या आरक्षण के मुद्दे को हार का कारण मानने से इनकार कर दिया। जेटली ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान को चुनाव में उठाया गया गलत मुद्दा बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार की वजहों पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पिछले साल पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये स्तर पिछले 30 सालों में इकट्ठा किए गए विश्वसनीय आंकड़ों में सबसे ज्यादा पाया गया है। पेरिस में दिसंबर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण और ग्रीन हाउस गैसों पर चर्चा होनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा कि दिसंबर में होने वाली कॉन्फ्रेंस पर काफी कुछ निर्भर करता है। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा गरीब देश प्रभावित होंगे, और अगर हम गरीबी के खिलाफ नहीं लड़ते हैं तो हमारे पास ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा नहीं होगी। जीवाश्म ईंधन से ज्यादा इस्तेमाल को कम करने के लिए जरूरी तकनीक का इस्तेमाल करना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं जिसका सामना हम आने वाले पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में करेंगे। ये थे फ्रांसवा ओला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रविवार को म्यांमार में हुए चुनाव की मतगणना के पहले नतीजों के मुताबिक आंग सान सूची की पार्टी एनएलडी ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन की 27 सीटें जीत ली हैं। वहीं एनएलडी के प्रवक्ता ने विन हेंत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि पार्टी को 70% सीटों पर जीत की उम्मीद है। संविधान के मुताबिक सेना के पास संसद की 25% सीटें सुरक्षित हैं, इसलिए सरकार बनाने के लिए विपक्षी पार्टी एनएलडी को बड़े बहुमत की जरूरत होगी। जॉर्डन के पुलिस ट्रेनिंग केंद्र में 2 अमरीकी और 1 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मारे गए तीनों लोग प्रशिक्षक थे और जॉर्डन के पुलिस अधिकारी ने इन लोगों पर गोलियां चलाई थी। राजधानी अम्मान में एक और घटना में एक अमरीकी नागरिक पर गोलियां चलाई गई जिससे वो घायल हो गया है। जॉर्डन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक गोलियां चलाने के बाद हमलावर पुलिस अधिकारी ने खुद को गोली मार ली है, लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि सैनिकों ने उस पर जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई थी। मिस्र की पुलिस ने कहा है कि काहिरा में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक वरिष्ठ नेता को मार गिराया गया है जिस पर कई हत्याओं में शामिल होने का आरोप था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। बिहार के चुनाव में एनडीए की जबरदस्त हार की समीक्षा शुरू हो गई है। आज पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करने आए पार्टी नेता अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता बीजेपी के हार की सबसे बड़ी वजह रही। संसदीय बोर्ड की बैठक तो आज शाम को हुई, लेकिन बीजेपी नेताओं का हार को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला इसके बहुत पहले ही शुरू हो गया। क्या हुआ पूरे दिन, सुनिए दिव्यार से।
बिहार में हार की समीक्षा करने के लिए दिल्ली में सोमवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी ने हार तो मान ली, लेकिन हार के कारणों को लेकर पार्टी सदस्यों में बड़ी खींचतान शुरू हो गई है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अरुण जेटली ने कहा कि पार्टी से चूक हुई कि उसने अलग अलग घटकों के वोटों के एक साथ जाने के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया।
सारे चुनाव के आंकड़े देखते हुए बैठक में एक लंबा विस्तृत विश्लेषण भी हुआ है और प्रारंभिक दृष्टि से जो मूल कारण हम लोगों को लगा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के तीनों घटक आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी अलग अलग से चुनाव लड़े थे। हमें लगता था कि शायद जब गठबंधन होता है तो हर एक घटक अपना पूरा वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करवा पाता, ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। वो अनुमान और आकलन हमारा गलत था।
बीजेपी ने विपक्ष की एकजुटता को हार का सबसे बड़ा कारण बताया। आरक्षण को लेकर सरसंचालक मोहन भागवत के बयान, गोमांस और नकारात्मक प्रचार समेत उन तमाम बातों को अहमियत नहीं दी जिनकी चर्चा पार्टी के दूसरे नेता और दूसरे दलों के नेताओं समेत तमाम विश्लेषक कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि कई बार चुनाव में हर पक्षों से ऐसे बयान हो जाते हैं और अगर आप आरजेडी के अध्यक्ष के बयान ले लो जो चुनाव के दौरान दिए जाते रहे, चुनाव आयोग ने भी उनकी समीक्षा की है, और इसलिए कोई चुनाव एक बयान के ऊपर तय होता है ऐसा नहीं होता। चुनाव की अपनी एक गणित अलग होता है।
अरुण जेटली ने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार के कामकाज का असर चुनावों पर हुआ है। वैसे हार की समीक्षा शुरू होने से पहले ही बीजेपी में एक दूसरे पर दोष मढ़ने का खेल शुरू हो गया है। चुनाव अभियान में दरकिनार कर दिए गए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने तो बहुत पहले से ही पार्टी नेतृत्व को निशाना बनाया है। बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने हार के लिए अमित शाह के हाई पिच प्रचार अभियान को जिम्मेदार ठहराया है। एनडीए गठबंधन में शामिल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि गोमांस का मुद्दा लोगों को बीजेपी से दूर ले गया। बीबीसी से बातचीत में मांझी ने कहा,
जिस दिन मोहन भागवत जी की बात आई हमने कहा कि मोहन भागवत जी ने कोई गलत नहीं कहा है और समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण का। 1962 में जवाहरलाल ने भी पार्लियामेंट में कहा था, लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव हो रहा हो उस समय इसको उठाने की क्या जरूरत थी, और यदि उठाई गई थी बात तो हम लोग तो विरोध किया और वास्तविक स्थिति को कहा, और फिर बीफ का मामला आया तो बीफ तो यहाँ हिसाब से ही लोग कटना करते हैं, कौन खाता है कौन पीता है उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन बैन तो उस पर है ही है, इस चीज को उठाने की क्या जरूरत थी।
नतीजे आने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश कुमार और लालू यादव से मिलने गए और उनकी जमकर तारीफ भी की। वहीं बीजेपी के कुछ नेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और उनके बयानों में काफी तलखी भी है, लेकिन अरुण जेटली का कहना है कि पार्टी के नेताओं से शालीनता की उम्मीद की जाती है और इस मुद्दे पर फिलहाल बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। जाहिर है पार्टी इस वक्त कई सवालों के घेरे में है। हार के कारणों पर दूसरे लोग चाहे जो कहें, उनकी तह में जाने के लिए पार्टी की संसदीय बोर्ड को शायद अभी कुछ और बैठकें करनी पड़ेंगी।
बिहार में एनडीए के हार की समीक्षा शुरू हो गई है। रिपोर्ट सुना रही थी दिव्या आर्य। बिहार में बीजेपी की हार ऐसे वक्त में हुई है जब देश में असहिष्णुता को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो क्या इस चुनावी हार का असहिष्णुता को लेकर दिख रही बेचैनी पर भी कोई असर होगा? हमारे सहयोगी शकील अख्तर ने वरिष्ठ पत्रकार हरतोष बल से यही सवाल पूछा। जवाब में उन्होंने कहा,
कुछ हद तक आप देखिए कि बीजेपी के बारे आज ये कहा जा रहा है कि ये कैंपेन विकास पे लड़ते तो वो जीत सकते थे। शुरुआत इन्होंने पैकेज से लेके की, कुछ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स के बारे की, पर पहले दो फेज के बाद क्लियर हो गया कि था ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है, तो बीजेपी रिवर्ट टू टाइप जो कहते हैं ना, हम एकदम वो कैंपेन चलाने लगी। उस तब गौमांस भी उन्हें याद आ गया, लोगों को पाकिस्तान भेजना याद आ गया, रिजर्वेशन में भी कम्युनलाइजेशन की बात जो किसी ने नहीं छेड़ी थी प्राइम मिनिस्टर ने खुद छेड़ी है, तो एकदम ये जो इनटॉलरेंस और लोगों को डराने की इनकी जो कोशिश थी इसके अगेंस्ट करा रही है, ये जवाब है वोटर।
तो इस शिकस्त से मोदी पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए मोदी वीकन हुए, बीजेपी को हर स्टेप सोच के चलना पड़ेगा। मोदी पर्सनली अब पहली बारी मेरे को लगता है पार्टी के अंदर सवाल उठाए जाएंगे, मोदी के लीडरशिप पे डायरेक्ट नहीं उठाए जाएंगे, अमित शाह की लीडरशिप पे सवाल उठाए जाएंगे, अरुण जेटली के बारे सवाल उठाए जाएंगे, और ये टारगेट नरेंद्र मोदी ही होएगा। और ये जो आरएसएस वर्सेस मोदी अमित शाह कंबाइन के कुछ हमें एक अंदाज ही मिल रहा है इसका पक्का, तो यहाँ पे इनके बीच अंदर क्या चलता है कोई भी नहीं कह सकता है, इसका कुछ ना कुछ आगे डेवलपमेंट जरूर हुई।
पिछले कुछ दिनों में जो जिनको हम हिंदुत्व की ताकतें कहते हैं, इंटॉलरेंस के जो जो वाकयात हैं वो काफ़ी बढ़े हैं, तो इस हार से क्या उन पर कुछ असर पड़ेगा किसी तरह का?
मेरे को तो लगता है कि ये सिर्फ कोऑर्डिनेटेड चाल नहीं है, ये वर्ड जो बिहार इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था ये बीजेपी का डीएनए है, ये संघ का डीएनए है। इन लोगों के खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो संघ और बीजेपी को जो अपना जो मूल रूप है ना वो त्यागना पड़ेगा, इन द सेंस दे विल हैव टू रिनाउंस व्हाट दे एक्चुअली बिलीव। तो इनके बारे इधर उधर कोई टिप्पणी दे दें, कुछ कह दें ये गलत है ये सही है, पर इनको डायरेक्टली इनके अगेंस्ट कभी एक्शन नहीं होगा। ये ताकतें मेरे को लगता है इस इलेक्शन के बाद और स्ट्रेंथन होंगी, क्योंकि मोदी का पावर वीकन हो रहा है, और अगर कोई रोक लगा सकता था मोदी रोक लगा सकता था, मेरे को लगता नहीं कि मोदी चाहता है कि इन पे रोक लगे।
तो ये बताइए कि कहा जा रहा था कि इस बिहार के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं इसका असर नेशनल लेवल पर होगा, इसका क्या मतलब है, क्या कोई असर होगा?
जरूर होगा। देखिए 2014 में मोदी के सामने क्या एक डिस्क्रेडिटेड नेशनल पार्टी कांग्रेस और एक डिवाइडेड ऑपोजिशन हर स्टेट में। तो आज जब ये रियलाइजेशन 2014 के बाद हो रही है तो एक रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है मोदी के खिलाफ, अलायंसेस बन रहे हैं, कांग्रेस ने अपना रोल कम कर दिया है, अलायंसेस की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, और मेरे को लगता है सेंटर में आके पार्लियामेंट में एक नेशनल कंसेंसस रहेगा मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन का।
कई लोगों का ये मानना है कि मोदी ने जिस तरह से तब्दीली की बातें की थी और बड़े रिफॉर्म की बातें की थी, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बातें की थी, वो शायद डिलीवर डेढ़ साल में लोगों को लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं और एक मायूसी बढ़ रही है उनके बारे में। तो उनकी हुकूमत क्या आपको लगता है कि इसके बाद दबाव बढ़ेगा और वो कुछ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे?
मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को तो लगता है यहाँ से अब डाउन है। ये मोदी के नेचर में नहीं लगता है डिलीवरी, मेरे को लगता है स्लोगनियरिंग उनके नेचर में है, डिलीवरी उनके नेचर में नहीं है। आप देखिए कितनी स्कीम्स, कितने स्लोगन्स, कैसी कैसी मीडिया के प्रोग्राम सामने आए हुए हैं, पर ग्राउंड लेवल पे अचीवमेंट, सरकार कैसे चलानी है, मिनिस्टर्स को थोड़ा इंडिपेंडेंस देनी है, ट्रस्ट करना, ये सब चीज़ें मोदी के नेचर में नहीं लगती।
ये थे हरदोष बल और उनसे बात कर रहे थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी शकील अख्तर। बिहार में नीतीश कुमार की जीत में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही है। नीतीश न सिर्फ महिलाओं में बेहद लोकप्रिय हैं बल्कि उनके चलाए कुछ कार्यक्रमों को महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार करने वाला भी माना जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने CSDS के निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार से पूछा कि महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, ये कहाँ तक सच है?
इन चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 5% ज्यादा था, लेकिन बहुत अचंभित होने की बात नहीं है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ बिहार के विधानसभा चुनाव में। 2010 का विधानसभा चुनाव हम देखें तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जिस समय महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 3% बढ़ा। यही ट्रेंड लगभग लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला जो 2014 में हुए थे, उसमें भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत 2-2.5% ज्यादा था। यह जरूर है कि 2015 के चुनाव में महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले जो गैप है वो और बढ़ गया और तकरीबन 5-5.5% महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है पुरुषों के मुकाबले।
ये जो कहा जा रहा है कि महिलाएं इतनी आ रही हैं वोट देने के लिए, उसके पीछे एक वजह ये है कि ज्यादातर परिवारों के पुरुष जो है वो राज्य से बाहर रहते हैं और राज्य में महिलाओं की संख्या वैसे भी ज्यादा है रहने वाले, तो ये क्या कितना सच है? ये
बहुत कॉन्फिडेंटली तो नहीं कहा जा सकता कि यही इसका कारण है कि बहुत सारे पुरुष राज्य से बाहर चले गए हैं रोजगार के अवसर में, कुछ इसमें सच्चाई जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बिहार में अगर हम ये देखें कि इसकी वजह क्या हो सकती है, दो वजह हमें सामने दिखाई पड़ती है। एक तो सीधा सीधा महिलाओं में जो एजुकेशन का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे सर्वेक्षणों से ये साफ पता चलता है कि अब बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अपने वोट देने का निर्णय स्वयं लेती हैं, जो 10 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 10 साल पहले जब हम सर्वे करते थे उसमें बहुत सारी बड़ी संख्या में महिलाएं ये कहती थी उन्होंने दूसरे के सलाह पे वोट दिया। इन तरह की महिलाओं की तादाद कम हुई है और महिला वोटर स्वयं निर्णय लेती हैं कि वोट किस पार्टी को देना है, उनकी संख्या बढ़ी है। दूसरी वजह यह है कि पंचायती राज में महिलाओं का के लिए 50% रिजर्वेशन था और यह प्रावधान बिहार में बहुत पहले से चला आ रहा है। इस तरह के परिवर्तन की महिलाएं सशक्त हों राजनीतिक दृष्टिकोण से अन्य दृष्टिकोण से, मुझे लगता है ये उसका नतीजा दिखाई पड़ता है। पंचायत के लगभग 3-4 चुनाव हो चुके हैं और अब ऐसा समय आ गया है जो महिलाएं पॉलिटिकल रूप से ज्यादा सशक्त हुई हैं बिहार में।
जो पिछला विधानसभा चुनाव था उस दौरान महिलाओं ने खास तौर से लालू को बिहार की राजनीति से बाहर रखने के लिए वोट दिया था, क्या वजह रही कि 5 साल में ये स्थिति बदल गई?
इस बात का कोई सीधा संकेत नहीं मिलता कि अगर महिलाएं ज्यादा निकल के आई तो उन्होंने पिछले चुनाव में लालू को बाहर रखने के लिए वोट दिया, और इन चुनाव में अगर वो बहुत ज्यादा तेज से निकल के आई तो उन्होंने नीतीश या लालू को के समर्थन में वोट दिया। सर्वेक्षण से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि महिलाएं वोट तो ज्यादा निकल के दे रही हैं, लेकिन उनके वोट भी पुरुषों के वोट की तरह ही बटे हुए हैं, उनमें कोई एक स्पष्ट रुझान दिखाई नहीं पड़ता।
फिर भी नीतीश कुमार महिलाओं में लोकप्रिय तो हैं ही, और अगर वो लोकप्रिय हैं तो क्या वजह है, मतलब उनके कार्यकाल में ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता मानी जा सकती है कि महिलाओं में काफी है?
या बिल्कुल, आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो सच बात यह है कि दूसरे किसी अन्य नेता के तुलना में महिलाओं में नीतीश कुमार की लोकप्रियता ज्यादा है। इसकी एक वजह साफ दिखाई पड़ती है, नीतीश कुमार के पिछले 10 साल के शासन में बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था के सुधार से हर नागरिक के जीवन पर असर पड़ता है, महिलाओं पे कुछ ज्यादा पड़ता है। हमें पता है महिलाएं जब वो सड़क पे निकलती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो पुरुषों की तुलना में उन्हें दूसरे चीजों का भी भय ज्यादा रहता है।
इसके अलावा भी कुछ और नीतीश कुमार ने बहुत खास किया है महिलाओं के लिए?
बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसकी सब चर्चा करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित कार्यक्रम है 12वीं क्लास 10वीं क्लास की लड़कियों को साइकिल देने की योजना, जिससे महिलाओं के बीच में लड़कियों के बीच में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, उनके एनरोलमेंट बढ़े हैं।
CSDS के निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार बता रहे थे कि बिहार में महिलाओं ने ज्यादा वोट क्यों दिया है नीतीश कुमार को। BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर निखिल रंजन के साथ, और अब बिहार के चुनाव के बाद चर्चा करते हैं एक और चुनाव की जो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में हो रहे हैं। म्यांमार में हुए चुनाव की मतगणना के पहले नतीजों के मुताबिक आंग सान सू ची की पार्टी NLD ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर रंगून की 12 सीटें जीत ली हैं। म्यांमार में रविवार को मतदान हुआ था। 25 सालों बाद सेना के प्रभाव से मुक्त माने जा रहे इन चुनाव में NLD को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
लोगों का ये हुजूम रंगून में NLD के मुख्यालय के बाहर अपनी नेता आंग सान सू ची के संबोधन के बाद झूमते हुए नारे लगा रहा था। आंग सान सू ची ने रविवार के ऐतिहासिक चुनावों के बाद पहली बार अपने उत्साहित समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि पार्टी के उम्मीदवारों को अभी बधाई देना थोड़ी जल्दबाजी होगी। शुरुआती चुनाव परिणामों के अनुसार सू ची की पार्टी सबसे बड़े रंगून शहर की सभी 12 सीटें जीत गई है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष तिन ऐ ने आधिकारिक तौर पर शुरुआती परिणामों में NLD के 2 सीटों के प्रत्याशियों की जीत की घोषणा की। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के डॉ खिन मोहमो आंग लाथा टाउनशिप से जीत गए हैं। उन्हें 9,905 वोट मिले हैं। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के ही यूतिन मोंग की सेइकिन टाउनशिप से जीत हुई है। ये थे चुनाव आयोग के अध्यक्ष तिन ए के शब्द। NLD के प्रवक्ता विन तेन ने समाचार एजेंसी AFP को बताया है कि NLD देश भर में 70% सीटें जीत रही है, हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है। म्यांमार के मतदाता चुनाव परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। को सान मिंट अंग नाम के ये व्यक्ति कहते हैं कि मुझे यकीन है कि NLD की ही जीत हो रही है, क्योंकि सभी लोग NLD के ही समर्थक नजर आ रहे हैं। सभी लोगों को चुनाव परिणामों का इंतजार है। यू थान ओ कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा, वही पार्टी जीतती है जो खूब मेहनत करती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। म्यांमार में वोटों की गिनती अभी जारी है। वहां भी सेना के समर्थन वाली यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी 2011 से सत्ता में है। इस बीच USDP के कार्यकारी अध्यक्ष यू तेउ ऊ ने BBC बर्मीज को बताया है कि वो खुद हिंथाडा सीट पर NLD के उम्मीदवार से हार गए हैं। संविधान के मुताबिक सेना के पास संसद की 25% सीटें सुरक्षित हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार बनाने के लिए विपक्षी पार्टी NLD को बहुत बड़े बहुमत की जरूरत होगी। हालांकि NLD की चुनाव में जीत हो भी जाती है तो भी नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर उनके राष्ट्रपति बनने में रोक लगी हुई है। म्यांमार के संविधान के मुताबिक जिस नागरिक के बच्चे विदेश में पैदा हुए हों वो सर्वोच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता है। सू ची के दोनों बेटों के पास ब्रितानी पासपोर्ट हैं और उनके पति एक विदेशी शिक्षक थे। लोकतंत्र के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाली सू ची 15 सालों से ज्यादा समय तक नजरबंद रही हैं।
म्यांमार के चुनावों की मतगणना पर रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। इन मतगणना के नतीजों का जो है हम विस्तृत समीक्षा करेंगे अपने अगले कार्यक्रम घटना चक्र में। फिलहाल रुख करते हैं क्रिकेट से जुड़ी एक खबर का जो कि आ रही है बीसीसीआई के बारे में। जैसा कि पिछले कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एन श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मुंबई में चल रही बीसीसीआई की वार्षिक बैठक में श्रीनिवासन को आईसीसी से वापस बुलाने का फैसला लिया गया। श्रीनिवासन के बचे हुए कार्यकाल के लिए शशांक मनोहर अब बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
बीसीसीआई के महासचिव अनुराग ठाकुर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आईसीसी में एन श्रीनिवासन की जगह अब मौजूदा बीसीसीआई प्रमुख शशांक मनोहर लेंगे।
बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन टू द प्रेसिडेंट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द बीसीसीआई रिप्रेजेंटेटिव टू द आईसीसी विल बी मिस्टर शशांक मनोहर।
इससे पहले कि आप अध्यक्ष से कोई सवाल पूछें, हम आपको बताना चाहते हैं कि आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि शशांक मनोहर होंगे और आईसीसी के बोर्ड के सदस्यों की ओर से वे आईसीसी के अध्यक्ष होंगे।
ये थे बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर के शब्द। अनुराग ठाकुर ने बताया है कि शशांक मनोहर वर्ष 2016 तक श्रीनिवासन का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक रहे श्रीनिवासन पर आर्थिक अनियमितता और स्पॉट फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप हैं, हालांकि वे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग मामले की सुनवाई करते हुए फैसला किया था कि वो हितों के टकराव के कारण बीसीसीआई का अगला चुनाव नहीं लड़ सकते। उधर पत्रकारों से बात करते हुए शशांक मनोहर ने कहा है कि हितों के टकराव के मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह बीसीसीआई के ऑम्बड्समैन होंगे। उन्होंने दावा किया कि सभी जानकारियां पूरी पारदर्शिता के साथ बीसीसीआई की वेबसाइट पर दी जाएगी और पूरी वार्षिक रिपोर्ट पहले ही वेबसाइट पर डाल दी गई है।
एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, द एंटायर एनुअल जनरल रिपोर्ट व्हिच हैज बीन सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर्स,
जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि जिस सालाना रिपोर्ट को सभी सदस्यों को बांटा गया है उसे पहले ही बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है। तो बोर्ड के सदस्यों के बीच बटे हर एक पन्ने को अब भारत का कोई भी नागरिक बोर्ड की वेबसाइट में पढ़ सकता है। और जैसा कि मैंने एक महीने पहले भी कहा था कि हम सारे सिस्टम की सफाई करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस बोर्ड को और अधिक पारदर्शी तरीके से चलाया जाए। अब तक हम जो कुछ कर सकते थे हमने सब कुछ किया है और अब जो कुछ होना बाकी है हम जल्द से जल्द कर लेंगे।
ये थे शशांक मनोहर के शब्द। मनोहर ने कहा कि आईपीएल से जुड़े विवादास्पद मामलों की जांच भी बोर्ड अपने स्तर पर करेगा। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच के एक सवाल पर शशांक मनोहर ने कहा कि इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से बोर्ड का फैसला भी होगा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के बोर्ड के संचालन में पेशेवर लोगों को तरजीह दी जाएगी। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैप्पन को भी अदालत ने स्पॉट फिक्सिंग का जिम्मेदार माना है। रवि शास्त्री को भी हितों में टकराव का हवाला देकर आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल से हटाया गया है।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय और अब बारी है आपके चिट्ठियों की, यानी आपकी राय। पेश कर रहे हैं इंदु पांडे और राजेश जोशी।
आपकी राय में एक बार फिर से आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं इंदु पांडे और आज मेरे साथ है
राजेश जोशी।
पहले तो आप ये बताइए आप थे कहां इतने दिन तक।
देखिए ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अचानक गायब हो गया था और बहुत सारे श्रोताओं को ये लगा होगा कि मैं कहाँ चला गया। मैं लंदन गया था, मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि बीबीसी सिंघला सर्विस के प्रमुख का काम मुझे देखना था। 3-3.5 महीने तक तो मैं वहाँ था और अब यहाँ आ गया हूँ, लेकिन जब वहाँ था तब भी दिलो दिमाग से मैं श्रोताओं के बहुत करीब था, अब तो हूँ ही।
शायद इसीलिए आपके लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ आई थी और लोग अक्सर पूछा करते थे कि आप हैं कहाँ पे।
आपने उनको सच सच बताया होगा ऐसी उम्मीद है।
बिल्कुल।
तो आज क्या चिट्ठियाँ, बहुत सारी मैं देख रहा हूँ, ईमेल भी हैं और पोस्ट कार्ड भी हैं आपके पास।
जी हाँ, चलिए हम चिट्ठियों की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो पहली चिट्ठी है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इनके ईमेल एड्रेस से लगता है कि ये है लव इंडिया। लिखती हैं कि आपकी रिपोर्टिंग से बहुत खुशी हुई क्योंकि सलमान रावी सीतू तिवारी को हमारी तरफ से सलाम। बिहार में जो हुआ उसकी उम्मीद मोदी जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
अब देखिए बिहार के जो नतीजे आए हैं उस पर आने वाले दिनों में भी लगातार हमारे पास श्रोताओं की प्रतिक्रिया आएंगी और जाहिर सी बात है सलमान रावी हों, सीतू तिवारी हों, मनीष शांडिल्या हों और हमारे पंकज प्रियदर्शी जो अभी भी बिहार में हैं उनकी रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है और हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि आपको उनकी रिपोर्टें पसंद आई।
और अगली हमारे पास चिट्ठी है, ये लिखा है हमारे पास रामचंद्र सुथार ने जैसलमेर राजस्थान से। लिखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के महानायक पंकज प्रियदर्शी द्वारा, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया,
दोबारा पढ़िए हिंदी पत्रकारिता के क्या कह रहे हैं,
महानायक
क्या
पंकज
बात है
प्रियदर्शी।
बहुत सुंदर, वाह। अच्छा सुथार साहब हमारे बहुत पुराने श्रोता है, मुझे इनका नाम याद है और बार बार चिट्ठी लिखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं।
लिखते हैं कि उन्होंने बिहार के हर कोने में पहुंचकर जहां मीडिया की नज़र न के बराबर है जिस प्रकार से बिहार का चुनावी चित्र प्रस्तुत किया है और प्रत्येक पार्टी के नेताओं से बातचीत की है, सचमुच उनकी तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है।
और शब्द तो मेरे पास भी नहीं है, सीधे पंकज प्रियदर्शी तक आपकी ये प्रतिक्रिया पहुँच जाएगी। और आपने जो लिखा है हिंदी पत्रकारिता के महानायक, अब ये उनको ही फैसला करने दीजिए कि आपकी इस टिप्पणी पर उनका क्या कहना है। जब वो लौटेंगे हम उनसे ज़रूर पूछेंगे।
हाँ, और उनको कहेंगे सुपरस्टार क्योंकि इन्होंने यही कहा है।
जी, आगे कोई और चिट्ठी है?
बिल्कुल, हमारे पास वैसे चिट्ठियाँ तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे लोगों ने दिवाली की शुभकामनाएं भेजी हैं। और बिहार के इलेक्शन पे ही सचिन पेडलकर का ही पुणे से मेल आया है, वो भी बहुत तारीफ करते हैं। राजेंद्र सिंह जोधपुर से, जनार्दन आरा बिहार से और मोहनलाल शर्मा की तारीफ की है एम जे मिश्रा जी ने धुले से।
आखिर क्या वजह है इस बार बड़ी तारीफों की चिट्ठियां आ रही हैं और मैं देखता हूं कि कहां आलोचना की चिट्ठी है उसको मैं सबसे ऊपर लेता हूं। लगता है आपने दबा दी आलोचना की चिट्ठियां।
हाँ, क्योंकि दिवाली का पर्व है ना।
अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना अच्छा है कि कुछ तारीफ भी अपनी सुनी जाए।
बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं मिस्री की बेरी लखू छोरी मन्ना बाड़मेर राजस्थान से। पवार परिवार की तरफ से दीपावली के मौके पर बीबीसी के सभी कर्मचारियों को बधाई हो।
बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे लिखा है कि इनके परिवार में, ये लिखते हैं कि मैं जेठाराम पवार जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लिखते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि जिस दिन मैंने इतिहास में अकबर महान का पाठ पढ़ा उसके दूसरे दिन ही रेहान फजल ने अकबर महान की वार्ता सुनाई और मुझे बहुत अच्छी।
ये जेठाराम जी है कहाँ के?
जेठाराम जी रहने वाले हैं बाड़मेर राजस्थान।
बाड़मेर के, अरे 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, बीबीसी रेडियो सुनते हैं, इसका मतलब हमारी जो अगली पीढ़ी है बीबीसी श्रोताओं की वो तैयार ही नहीं हो रही है, बहुत ही सजग पीढ़ी तैयार हो रही है।
और आगे इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी लिखा है कि जब आदेश जी खेल समाचार सुनाते हैं तब हमको इतनी खुशी होती है कि मुझे मेरी शादी पर भी नहीं हुई होगी।
अच्छा, लगता है ये विवाहित हैं या शादी होने वाली है, उसको ये पहले से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जितनी खुशी होती आदेश कुमार गुप्त को सुनने से उससे ज़्यादा खुशी होती है। बहरहाल जेठाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं देख रहा हूँ एक चिट्ठी आपके पास है जो मोहिनी पुराणिक ने भेजी है, ये अरुंधति रॉय से मेरी जो बातचीत हुई है उस पर कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहा है इन्होंने?
मोहिनी जी ने कहा है कि आप जब सिख दंगे और अन्य पूर्व की घटनाओं के बारे में साहित्यकों के विरोधकों का प्रश्न रख रहे थे तब कश्मीरी पंडितों का उल्लेख न करना अजीब लगा। साहित्यकों के विरोधकों का सबसे बड़ा आरोप तो यही है, ये उल्लेख राजेश जोशी जी आपसे छूट जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, समय सीमा का भी कारण नहीं हो सकता, तो क्या कारण है?
मोहिनी पुराणिक जी, आप तो बीबीसी के बहुत पुराने श्रोता हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजती रहती हैं, तो आप इस बात को समझिए कि जब किसी से इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उनके सामने हर मुद्दा आप उसका लिस्ट नहीं गिनाते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं आप, और उदाहरण में आपको जो जो चीज़ उस वक्त याद आती है वो रखते हैं। जैसे 84 के दंगों की बात याद आई या दलितों के प्रति जो अत्याचार होते हैं उनकी बात याद आई, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हमने जानबूझ करके दबा दिया, ऐसा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना और आपको बातचीत पसंद आई, शुक्रिया।
तो इसी के साथ अब पता बता दें?
आप बिल्कुल पता बता दीजिए क्योंकि घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब विदा लेने का वक्त आ चुका है।
तो आप बताइए।
मैं ही बताऊँ? तो श्रोताओं आपको पता तो याद ही होगा लेकिन अगर आप याद न रख पाए हों तो नोट कीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003। तो चलते चलते कह दें दिवाली मुबारक हो।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी या आरक्षण के मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में हार का कारण मानने से इनकार कर दिया है। जेटली ने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों के आपस में सफल वोट ट्रांसफर की वजह से एनडीए की हार हुई। रविवार को म्यांमार में हुए चुनाव की मतगणना के पहले नतीजों के मुताबिक आंग सान सूची की पार्टी ने यांगोन में 27 सीटें जीत ली हैं। एनएलडी को 70% सीटों पर जीत की उम्मीद है। जॉर्डन के पुलिस ट्रेनिंग केंद्र में 2 अमरीकी और 1 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मिस्र की पुलिस ने कहा है कि काहिरा में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक वरिष्ठ नेता को मार गिराया गया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडवाल। दिनभर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक के लिए स्टूडियो मैनेजर शाकिर आलम के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।